नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। एक दिन के लिए अमर पद देख लेना, बिना अमर पद देखे 100 वर्षों से भी श्रेयस्कर। योच वस्स सतम जीवे अपस्सम अमतम पदम एकाहम जीवितम से यो पस्सतो अमतम पदम। अमृत पद अर्थात निर्वाण को न देखने वाले व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से अमृत पद को देखने वाले व्यक्ति का एक दिन का जीवन भी श्रेयस्कर होता है। धम्मपद गाथा 114। किसा गौतमी की कथा। कल मैंने आपको पटाचारा की कथा सुनाई जिसने अपना समस्त परिवार खो दिया था। यह भी वैसी ही एक कथा है जो दर्शाती है कि विश्व कितना दुखमय है। किसा गौतमी नामक एक युवा माँ थी। वह एक गरीब परिवार में जन्मी थी तथा लोग उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। उसके नाम किसा का अर्थ पतली या लघु होता है। फिर विवाह के उपरांत उसे एक पुत्र हुआ और इस कारण वह लोकप्रिय हो गई। किंतु उसके पुत्र की अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई तथा जिससे उसके जीवन का महत्व था वह समाप्त हो गया। मृत्यु से उसका सामना कभी नहीं पड़ा था, अतः वह यह समझ नहीं पाई। उसने सोचा कि बच्चा गंभीर रूप से बीमार है, अतः वह उसके उपचार की तलाश में उसे कूल्हे पर रखकर चारों ओर घूम रही थी। किसी ने उसे बुद्ध के पास जाने की सलाह दी। तब तक वह लगभग पागल सी हो गई थी। लोग उस पर हंस रहे थे एवं वह अत्यंत उद्विग्न हो रही थी। जब वह बुद्ध के पास पहुंची, वे जेतवन कुंज में निवास कर रहे थे तथा उस समय भिक्षुओं को उपदेश दे रहे थे। वह सभागार में खड़ी हुई तथा उसने बुद्ध से उस चिकित्सा के लिए अनुरोध किया जिसकी तलाश अब तक व्यर्थ थी। बुद्ध ने देखा कि इसके पहले उसने किसी मृत व्यक्ति का सामना नहीं किया था तथा वह धम्म में स्थापित होने के लिए तैयार थी। उन्होंने उससे कुछ सरसों के बीज लाने के लिए कहा। जब वह जाने लगी तो बुद्ध ने कहा कि एक क्षण प्रतीक्षा करो और बताया, सरसों का बीज उस घर से आना चाहिए जहां कभी कोई मृत्यु न हुई हो। अतः किसा गौतमी अपने मृत बच्चे को कूल्हे पर रखे नगर में चारों ओर घूमने लगी, इस आशा से कि उसे वह प्राप्त हो जाएगा जिससे उसके बेटे की चिकित्सा होगी। किंतु उसे शीघ्र ही यह पता चल गया कि मृत्यु जैसा नियमित आगंतुक और कोई नहीं है। उसे अनुभव होने लगा कि मृत्यु सार्वभौमिक है। मृत्यु की प्रबलता से वह अभिभूत हो गई तथा समझ गई कि बुद्ध उसे एक सबक सिखाना चाहते थे। वह बच्चे को श्मशान ले गई। अब वह समझ गई कि केवल उसका पुत्र ही नहीं था जिसकी मृत्यु हुई हो। वह बुद्ध के पास लौट आई तथा एक भिक्षुणी बन गई। उन्होंने पूर्व जन्मों में जो साधना की थी उनसे उनको लाभ मिला। कुछ भी शाश्वत नहीं है, इस ज्ञान का अनुभव करने में उन्हें कठिनाई नहीं हुई। वे समझ गईं कि अस्तित्व के सभी लोकों में, यहाँ तक कि ब्रह्म लोकों में भी प्राणियों की मृत्यु होती है। केवल एक अरहत ही पूर्ण रूप से चला जाता है, फिर कभी पैदा नहीं होगा, फिर कभी मरेगा नहीं। वे अब उच्चतम चिकित्सा के लिए तैयार थी जिससे उनका उपचार सदैव के लिए हो जाएगा। बुद्ध ने उन्हें चार जल प्लावनों ओघ पर एक प्रवचन दिया जो हम सभी को विह्वल कर देते हैं। इन्हें चार दूषणों या मादकों अर्थात आसवों के रूप में भी जाना जाता है। ये हैं एक कामेच्छा, दो अमर अस्तित्व की इच्छा, तीन अनुचित विचारों का धारण व चार अज्ञानता। इन जलप्लावनों को पार करने वाला पाली में ओघतिन्नो ही एक अरहत होता है। किसा गौतमी को वह सत्य समझ में आ गया जिसे साधारण मनुष्य समझने में असमर्थ होते हैं। जब उन्होंने अमर पद प्राप्त कर लिया तो बुद्ध ने वह गाथा सुनाई कि अमृत पद अर्थात निर्वाण को न देखने वाले व्यक्ति के 100 वर्ष के जीवन से अमृत पद को देखने वाले व्यक्ति का एक दिन का जीवन भी श्रेयस्कर होता है। माँ विशाखा की कहानी। एक अन्य अवसर पर प्रमुख गृहस्थ महिला शिष्या विशाखा बुद्ध के पास आईं। उनके कपड़े और बाल भीगे थे। जब बुद्ध ने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया, भंते मेरा एक अत्यंत प्रिय नाती मर गया है, इसी कारण मैं अपने भीगे वस्त्र एवं बालों के साथ इस असामान्य समय पर आई हूँ। यह एक शोक का संकेत था। बुद्ध ने विशाखा से पूछा, जितने की श्रावस्ती में मनुष्य हैं, क्या आपको उतने ही नाती पोते चाहिए? इस संसार की सबसे बड़ी खुशी अनेक बच्चों का होना माना जाता था। अतः विशाखा ने बुद्ध के प्रश्न का उत्तर हाँ में दिया। बुद्ध ने पूछा, किंतु विशाखा, श्रावस्ती में प्रत्येक दिन कितने लोगों की मृत्यु होती है? उन्होंने कहा, भंते श्रावस्ती में प्रत्येक दिन 1 से लेकर 10 लोगों की मृत्यु होती है। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जब किसी न किसी की मृत्यु ना हो। बुद्ध ने पूछा, तो फिर क्या आप कभी भी भीगे वस्त्र एवं भीगे बालों के बिना रह पाएंगे? विशाखा ने उत्तर दिया, नहीं भंते, मेरे पास अब पर्याप्त नाती पोते हैं। तथा बुद्ध ने उनसे कहा कि जिसके 100 प्रियजन हो उन्हें 100 कष्ट होगा, यहाँ तक कि एक प्रियजन का अर्थ होगा पीड़ा। बुद्ध ने कहा, जिनका कोई प्रियजन नहीं है उन्हें कोई पीड़ा नहीं है, वे शोक रहित, निराशा रहित एवं आवेशहीन होते हैं। तथा उन्होंने निम्नलिखित गाथाएं सुनाई। ये केचिसो का परिदेवितावा दुखा चलोकस मिमने करूपा पियम पटिचप भवंतियेते पिये असंते न भवंतियेते तस्माहिते सुखिनो वीतशोका एसम पियम नथ्य कुहिंचि लोके तस्मा अशोकम विरजम पथयानो पियम न कैराथ कुहिंचि लोके। प्रियजनों के कारण ही इस संसार में दुख एवं शोक तथा प्रत्येक प्रकार की पीड़ा होती है। जब कोई प्रियजन न हो तो वे समाप्त हो जाती हैं। जिनका कोई प्रियजन नहीं होता वे सुखी एवं शोक रहित होते हैं। वह व्यक्ति जिसे शोक रहित आवेशहीनता की तलाश है उसका कोई भी प्रियजन नहीं होना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि यहाँ जब बुद्ध प्रिय की बात करते हैं तो वे आसक्त होने के अर्थ में करते हैं। विशाखा मिगार की माँ के रूप में जानी जाती थी। मिगार वास्तव में उनके श्वशुर थे। वे विशाखा के कारण ही धम्म में स्थापित हुए थे तथा उन्होंने उनसे बताया कि इसी कारण वे उनकी माँ के समान थी। इसी भाव में छात्र श्यामा जी को माँ श्यामा जी कहकर संबोधित करते हैं। जब विशाखा ने कहा कि उनके पर्याप्त बच्चे तथा नाती पोते थे तो वह एक महत्वपूर्ण टिप्पणी थी, क्योंकि उनको 10 पुत्र एवं 10 पुत्रियाँ थीं। प्रत्येक संतान को 10 पुत्र एवं 10 पुत्रियाँ थीं। इस प्रकार 400 नाती पोते हुए। प्रत्येक नाती को 20 बच्चे थे, इस तरह 8000 पर पोते हुए। अतः विशाखा एवं उनके पति को मिलाकर परिवार में 8422 सदस्य थे। जब विशाखा अपनी बेटियों, पोतियों तथा परपोतियों के साथ बैठी होती थी तो यह बताना असंभव होता था कि उनमें विशाखा कौन है। अपनी वृद्धावस्था के कारण उठते समय जब वे अपने घुटनों पर हाथों का दबाव डालती थी, केवल तभी यह अनुमान लगाया जा सकता था कि उनमें से विशाखा कौन है। उनकी सुंदरता अतुलनीय थी तथा वे 120 वर्ष तक जीवित रहीं। अपने जीवन भर उन्होंने श्रावस्ती के भिक्षुओं को खिलाया। ऐसा कहा जाता था कि श्रावस्ती में रहने वाले एक भी भिक्षु ऐसे नहीं थे जिन्होंने उनका भोजन न चखा हो। प्रत्येक दिन वे हजारों भिक्षुओं, भिक्षुणियों तथा गृहस्थ शिष्यों को भोजन कराती थी। माँ विशाखा 7 वर्ष की आयु में ही प्रथम फल अर्थात सोतापन्न पद में स्थापित हो गई थी, किंतु जैसा कि हमने देखा, इससे उनके जीवन के सारे दुख नष्ट नहीं हो पाए थे। जब उन्होंने उस आनंदमयी फल पद का वास्तव में अनुभव किया था तो उस समय उन्हें दुख बिल्कुल नहीं था, किंतु जहाँ सदैव के लिए दुख का निर्मूल नाश हो जाता है, उस पद तक पहुँचने के लिए उन्हें आगे और भी साधना करने की आवश्यकता होगी। दुख। कल हमने अस्तित्व की 3 विशेषताओं के बारे में बात की, नश्वरता या अनिच्च, पीड़ा या दुख तथा किसी स्थायी स्वयं का अभाव या अनत्ता। तथा हम नश्वरता के विषय में कुछ विस्तार में गए। आज प्रातः हम और अधिक सूक्ष्मता से दुख, पीड़ा या कुंठा की जांच करते हैं। सयाजी उबाखी ने कहा है, नश्वरता या अनिच्च की विशेषताएं दुख या कुंठा की विशेषताओं से अंतरंग रूप से बंधी हैं। चाहे परिवर्तन आकस्मिक हो जैसे मृत्यु एवं पुनर्जन्म, या एक लंबी अवधि में हो, जब तक शरीर जीवित है मृत्यु की संभावना की अनिवार्यता विद्यमान है। जब तक परिवर्तन तथा नश्वरता है वहां दुख एवं कुंठा है। बुद्ध ने अपने सर्वप्रथम उपदेश धम्म चक्र पवत्तन सूत्र में 4 आर्य सत्य के विषय में बताया। 4 आर्य सत्यों में प्रथम दुख सत्य है। हमने यह प्रवचन आपको दूसरे दिन प्रातःकाल में दिया था। बुद्ध ने कहा, तो भिक्खुओं, यह दुख का आर्य सत्य है। जन्म दुखद है, वृद्धावस्था दुखद है, रोग दुखद है, मृत्यु दुखद है, अप्रिय का साथ दुखद है, प्रिय से विरह दुखद है, इच्छानुकूल वस्तु प्राप्त न कर पाना दुखद है। संक्षेप में 5 स्कंध अर्थात भौतिक रूप, संवेदना, संज्ञा, संस्कार एवं चेतना जो अस्तित्व का नवीनीकरण करते रहते हैं दुखद हैं। तो भिक्षुओं, दुख की उत्पत्ति का आर्य सत्य यह है, वह है तृष्णा, पाली में तणहा, जो पुनर्जन्म की ओर ले जाती है, जो विभिन्न प्रकार की इच्छाओं द्वारा आह्लादित होती है, जिसकी संगत उमंग एवं हर्ष से होती है, आर्थिक अर्थात कामुक इच्छा की लालसा, एक शाश्वत अस्तित्व की लालसा तथा अस्तित्वहीनता की लालसा। तो भिक्षुओं, दुख के समापन का आर्य सत्य यह है, वह है समाप्ति, तृष्णा की पूर्ण अनुपस्थिति, त्याग, मुक्ति, स्वतंत्रता, निष्काम उदासीनता। तो भिक्षुओं, दुख की समाप्ति के लिए प्रमुख मार्ग का आर्य सत्य यह है, वह है अष्टांगिक आर्य मार्ग अर्थात सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक सति एवं सम्यक एकाग्रता। 4 में से प्रथम आर्य सत्य में बुद्ध हमारे दैनिक जीवन की स्थितियों की चर्चा करते हैं। प्रत्येक मनुष्य जन्म लेता है जरण या आयुर्विध के साथ, अनेक प्रकार के शारीरिक तथा मानसिक रोग एवं व्याधियां होती हैं और अंततः प्रत्येक मनुष्य को मरना पड़ता है। प्रत्येक दिन हमें उन वस्तुओं एवं व्यक्तियों से संबद्ध होना पड़ता है जिनसे हम नहीं होना चाहते, तथा प्रत्येक दिन हमारा उन वस्तुओं एवं व्यक्तियों से वियोग होता है जिनके हम सदैव संपर्क में रहना चाहते हैं। प्रत्येक दिन हम उन चीज़ों के लिए काम करना चाहते हैं जिन्हें हम प्राप्त नहीं कर सकते। अब मैं दुख के इस आर्य सत्य के विषय में सयाजी उबाखी के लेखन से एक उद्धरण पढ़ता हूँ। सयाजी उबाखी ने अपने व्याख्यान बौद्ध धर्म है क्या में लिखा है, जब मैं कहता हूँ कि बुद्ध के अनुसार जीवन दुख है तो कृपया यह मत सोचिए कि जीवन दूभर है, जीने योग्य नहीं है, तथा बौद्ध दुख की अवधारणा एक भयानक संकल्पना है जो एक सुखी जीवन का उचित अवसर नहीं देगी। सुख क्या होता है? विज्ञान ने भौतिकता के क्षेत्र में जो उपलब्धि की है, क्या उससे संसार के लोग सुखी हैं? वे यदा कदा इंद्रिय सुखों को पा सकते हैं, किंतु जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है तथा होने वाला है, उससे उनको हार्दिक प्रसन्नता नहीं होती। क्यों? यह इस कारण से है कि भले ही मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है, किंतु वह अभी अपने मन पर विजय नहीं पा सका है। मन की आंतरिक शांति से उत्पन्न हर्ष या प्रीति, पाली में प्रीति, जो बौद्ध ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त हो सकती है, उसकी तुलना में वासना के भोग से उत्पन्न आनंद कुछ भी नहीं है। जैसे कोई गंवार व्यक्ति अपने शरीर की खुजली को सावधानी से खुजलाने में आनंद पाता है, इंद्रिय सुख वैसे ही या तो पहले या बाद में पीड़ा एवं कष्ट देते हैं, जबकि प्रीति पहले या बाद में इस प्रकार की समस्याओं तथा पीड़ा से मुक्त होती है। यह प्रीति क्या है, आपके लिए इसका कामुक दृष्टिकोण से मूल्यांकन कर पाना कठिन है, किंतु मुझे पता है कि आप इसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं तथा एक तुलनात्मक मूल्यांकन के लिए इसका स्वाद भी ले सकते हैं। अतः इस परिकल्पना में कुछ भी नहीं है कि बौद्ध धर्म आपको वह सिखाता है जिससे आपको दुख के दुःस्वप्न से पीड़ा होगी, किंतु मेरे विचार से यह जीवन की सामान्य परिस्थितियों से मुक्ति दिलाता है। जैसे स्वच्छ जल के तालाब में एक कमल अपने उग्र परिवेश से प्रतिरक्षित होता है, यह आपको वह आंतरिक शांति देगा जिससे यह संतोष प्राप्त होगा कि आप न केवल दैनिक जीवन की कठिनाइयों से परे हो रहे हैं, किंतु धीरे धीरे और निश्चित रूप से जीवन पीड़ा तथा मृत्यु की सीमाओं से भी परे हो रहे हैं। डॉक्टर राइट का अनुभव। अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जो मन की आंतरिक शांति प्राप्त करने में तथा ध्यान के माध्यम से उपलब्ध आनंद का स्वाद चखने में सक्षम हुए। यंगोन के अमरीकी दूतावास में एक श्याम वर्ण के अमरीकी सांस्कृतिक दूत या अटैचे के रूप में काम करते थे, जो अप्रैल 1957 में सयाजी तथा सयामाजी के अंतर्गत साधना करने अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्र में लाए गए। वे बर्मा के एक लघु न्यायालय के न्यायाधीश के मित्र थे। ये न्यायाधीश एक अन्य बौद्ध साधना की विधि का अभ्यास कर चुके थे तथा दूसरों को सिखाते भी थे। वे IMC यंगोन में ध्यान लगाने के लिए आए और जब सयामा जी ने उन्हें बताया कि उन्हें एक घंटे तक बैठना होगा तो वे हंसे। उन्होंने कहा कि उनकी तो 22 घंटे तक बिना हिले डुले बैठने की आदत थी। चूंकि वे स्वयं साधना के एक आचार्य थे, अतः उन्होंने विशेष रूप से एक महिला के मार्गदर्शन में काम करने के कारण थोड़ी अरुचि के साथ साधना प्रारंभ की, किंतु एक घंटा समाप्त होने के पहले ही उन्हें समझ में आ गया कि वे एक अत्यंत शक्तिशाली विद्या के संपर्क में थे। वे पहले की तरह एक घंटे भी नहीं बैठ सके तथा तब से उनके मन में श्यामा जी के लिए गहरा सम्मान उत्पन्न हुआ। अतः उन्होंने उन श्याम वर्ण अमरीकी डॉक्टर राइट को सयाजी एवं श्यामा जी के अंतर्गत साधना के लिए प्रोत्साहित किया। न्यायाधीश एक पुराने छात्र थे, अतः वे काम के बाद आकर ध्यान लगाते, रात बिताते तथा प्रातः अपने काम के लिए जा सकते थे। इस प्रकार उन्होंने डॉक्टर राइट को और प्रोत्साहित किया। डॉक्टर राइट केंद्र पर आने से पहले बर्मा में कई आध्यात्मिक गुरुओं से मिल चुके थे, किंतु यह उनका पहला साधना शिविर था। सदैव की तरह दिन में सयाजी उबाखी अपने कार्यालय में होते थे तथा श्यामा जी प्रभारी होती थी। विपस्सना एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के एक सदस्य ऊ मांग मांग खी, जो सयाजी उबाखी द्वारा स्थापित विपस्सना शोध संस्था के सदस्य भी थे, कोर्स करने हेतु केंद्र पर थे। अतः वे श्यामा जी एवं डॉक्टर राइट के लिए अनुवाद कर सके थे। एक दिन डॉक्टर राइट अशांत हो गए तो उन्होंने ऊ मांग मांग खी से श्यामा जी को बताने के लिए अनुरोध किया। यंगोन के केंद्र पर छात्र या तो किसी कोशिका में या पगोडा के चारों ओर के 8 कक्षों में से एक में ध्यान लगाते हैं तथा आचार्य पगोडा के मध्य में ऊंचे मंच पर बैठते हैं। डॉक्टर राइट बोधि वृक्ष के पक्ष में एक कोशिका में थे तथा श्यामा जी आई एवं केंद्र में अपने स्थान पर बैठी। डॉक्टर राइट ने स्पष्ट किया कि उन्हें कठिनाई हो रही थी, क्योंकि जब वे अपनी आंखें बंद करते थे तो उन्हें एक राक्षस की आकृति आमने सामने दिखाई देती थी। श्यामा जी ने यह सोचकर कि उन्हें भी उनकी सलाह स्वीकार करने में कठिनाई हो सकती है, यह परामर्श दिया कि कार्यालय से लौट आने पर सयाजी से वे इसके बारे में पूछें। किंतु डॉक्टर राइट ने कहा, आपके वचन को मैं आधिकारिक मानूंगा, आप जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। तो उन्होंने कहा, आपके पास कोई ऐसी वस्तु है जिससे आपको लगाव हो गया है किंतु वह आपकी साधना के लिए अनुकूल नहीं है। डॉक्टर राइट ने अपनी जेब से एक छोटा बर्मी पर्स बाहर निकाला और उन्हें देने लगे। श्यामा जी ने कहा, मुझे मत दे, इसे मांग मांग खी को लेना चाहिए। ऊ मांग मांग खी हिचकिचाए, वे उस वस्तु के संपर्क में आने के विषय से थोड़ा चिंतित थे। अतः माँ श्यामा जी ने यह समझा कर जोर दिया कि यदि इससे वे प्रभावित हुई तो वहाँ कोई आचार्य नहीं होगा, किंतु यदि उसे उन्होंने ले लिया तो वे उन्हें सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ होंगे। अतः ऊ मांग मांग खी ने उसे ले लिया तथा दूर रख दिया। डॉक्टर राइट ने राक्षस के प्रति करुणा अनुभव की तथा उसके साथ पुण्य बांटने की कामना की तथा उन्होंने सूचित किया कि उन्हें ऐसा लगा कि मानो एक महान तूफान ने राक्षस को उड़ा दिया हो। तत्पश्चात वे ठीक से ध्यान लगाने लगे। सायंकाल जब न्यायाधीश वापस आए तो उनको यह घटना के विषय में बताया गया। सयाजी ने कहा, क्यों न उसे फेंक दिया जाए, आपने इसके प्रभाव को देखा है, क्या आपको अभी भी इसमें उतनी ही आसक्ति है? तो डॉक्टर राइट ने बाड़े के उस पार केंद्र के पीछे निर्जन जमीन के टुकड़े में उसे फेंक दिया। वास्तव में सयाजी के समय केंद्र पर छात्रों के लिए एक सूचना टंगी होती थी कि यदि उनके पास कोई मनका या धागा हो तो वे उसे प्रबंधक को दे दें। कभी कभी डॉक्टर राइट की तरह इस तरह के निर्देशों का विवेक हमें कठिन तरीके से सीखना पड़ता है। उस घटना के बाद डॉक्टर राइट ने अपनी आंतरिक चक्षु से सयाजी का एक बिंब देखा कि वे बृहदाकार थे तथा बुद्ध की मूर्ति के बगल में थे एवं उनके बगल में एक बहुत ही छोटी काली आकृति देखी और डॉक्टर राइट ने उसे स्वयं की आकृति समझा। उन्होंने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बंदर की तरह चारों ओर कूद फांद रहा हो। जब उन्होंने विपसना की तो डॉक्टर राइट ने बहुत अच्छा किया। उस समय ध्यान के लिए भूतल कोशिकाओं का निर्माण चल रहा था। उनकी कोशिका से 5 फीट से भी कम की दूरी पर लोग कंक्रीट की ढलाई कर रहे थे तथा जब वे साधना करते थे तो वे 1.5-1.5 घंटे तक निर्माण स्थल से शोर सुने बिना ध्यान मग्न रह सकते थे। डॉक्टर राइट अमेरिका वापस चले गए तथा 1963 में सयाजी उबाखी ने उन्हें आनापान शिक्षण में अधिकृत करने के लिए एक पत्र भेजा। वे बर्मा के बाहर साधना के आचार्य के रूप में अधिकृत किए जाने वाले पहले व्यक्ति थे। वह पत्र बर्मा दूतावास वाशिंगटन डीसी में बर्मा के राजदूत द्वारा एक सार्वजनिक समारोह में उन्हें प्रस्तुत किया गया। डॉक्टर राइट ने सूचित किया कि 3 वर्ष के भीतर 10,000 लोगों को, महाविद्यालयों के पुरुषों तथा महिलाओं को एवं अपने जैसे ईसाई पादरियों को उन्होंने उपदेश दिए। सयाजी उबाखी उस समय की कहानी बड़े चाव से सुनाते थे। जब इंग्लैंड की पॉलिटिक्स सोसाइटी की सचिव यंगॉन के केंद्र पर आई थी, जब उन्हें पता चला कि अमेरिका के एक धर्म प्राचार्य जिन्होंने पाली ग्रंथों का कभी अध्ययन नहीं किया था बौद्ध धर्म पर व्याख्यान देते हैं, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। सयाजी ने उन्हें बताया कि डॉक्टर राइट को अपने व्यक्तिगत अनुभव से बुद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने यह भी बताया कि सयामा जी ने भी गंभीरता से ग्रंथों का अध्ययन कभी नहीं किया था, तथापि वे किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकती हैं, चाहे वे प्रश्न गृहस्थ द्वारा हों या विद्वान भिक्षुओं द्वारा। वे अपने अनुभव से तथा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त ज्ञान के कारण उनका उत्तर दे सकती हैं। यदि आप अपने अनुभव से उत्तर देते हैं तो आप कैसे गलत हो सकते हैं। आज सुबह केवल इतना ही। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु साधु साधु।